देखिए, मैं उसके खिलाफ और हक में कोई बात नहीं कर रही। इस पे मेरे से बाद में कोई लिबास के बारे में सवाल जवाब ना करें प्लीज। आपको मैं 10 और मिसालें इसके अलावा भी दे सकती हूँ, जिसमें बीमाला तहवान फुसुकुमा। और ये जो लफ्ज़ है ना, तहवा, हवा, हवा किसको कहते हैं? ये जो हवाएं हैं, वो ख्वाहिशें जो बंदे को उड़ाती हैं, और वो चीज हवा, यहवी तहवी, या कहते हैं अरबी में बुलंदी से नीचे गिरना। तो ख्वाहिशों पे के पीछे चलने वाला ऊपर से मुंह के धड़ल गिरेगा, नाक कान कुछ ना कुछ तो जख्मी हो ही जाएगा। ये आज हमारे साथ होता है। हम कहते नहीं ऐसे नहीं, हम कहते हैं वैसे नहीं। अल्लाह कहते ये बुनियादी वजह है इस किताब से दूर रहने की, कि लोग ये करना नहीं चाहते। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने तो किताब खोल के हमारे सामने रख दी ना। एक तो बात होती है ना कि इस्लाम की कोई बात है हम ना माने, नहीं मानते भी सॉरी है, लेकिन मान नहीं रही, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं भी इसको मानूँ। ये भी खतरे की बात है, लेकिन ज्यादा नहीं। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप अपने घर में एक मशीन रखें, तो कंप्यूटर ले आए आपके मियाँ, तो कह दे ये कंप्यूटर तो है लेकिन अभी इसको एक्टिवेट नहीं किया, पड़ा रहे। कोई बात नहीं, 1 साल 6 महीने जब जरूरत पड़ेगी फौरन डालेंगे उसमें, चीजें इंस्टॉल कर लेंगे, खत्म हो जाएगी। ये तो ठीक है, वेरी गुड, खैर है, आप मानते हैं ये है। आज हमारा मसला पता क्या हुआ, कि हमने इस्लाम के जिन हुक्मों पे अमल नहीं करना चाहा ना, उसको इस्लाम से ही निकाल के फेंक दिया। हम कहते फतवा दो कि ये नहीं करना, फतवा दो कि ये जायज है। बात वाज़े, पिकी एंड चूज ऐसे हुए कि अपनी मर्जी से कुछ चीजों को निकाला डाला, और निकाला जब तो जगह तो खाली नहीं छोड़नी थी, तो उसकी जगह फिर डाला। एक पुर्जा ईसाइत का डाला, एक हिंदुइज्म का डाला, एक जूइज्म का डाला, एक बुद्धास का डाला, करते कराते, और फिर कहते इस्लाम की मशीन चलती कोई नहीं है ही नहीं, तो आती नहीं चलानी। अल्लाह को नौज बिल्ला शरीयत बनानी नहीं आती, ऐसी नामुमकिन नाकाबले अमल शरीयत बना के दे दी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम छोड़ो, दिल का मानी ये हो, पीछे पड़ चुके हैं ना, ये तुम्हारी फॉल्स पैराडाइज है जिसमें तुम जा रहे हो अपनी ख्वाहिशात के साथ। आप देखिए इसको 20 मिसालों से समझ सकते हैं, बीमार लात अहवान फुसुकुम। मसलन मैं यूके में आई अभी थोड़े दिन हुए, मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ के कुछ कानून तो पसंद है, मैं वो जरूर मानूंगी, और ये 1 2 3 फलां 3 ये मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं मानूंगी। क्या गवर्नमेंट मुझे यहाँ रहने देगी? कोई कहता है कि मैं इस मुल्क में, देखो ना इतनी बातें तो मानता हूँ ना, देखो मैं ट्रैफिक पे रुक भी जाता हूँ, रेड लाइट पे रुकता हूँ, ग्रीन पे चलता हूँ, सीट बेल्ट भी बांधता हूँ, अब क्या जरूरी है कि मैं यहाँ रह के टैक्स भी दूँ? कोई रहने देगा आपको? किसी मुल्क के अंदर रहते हुए आप 10 कानून माने, एक छोड़ दें, वो कहेंगे चलो ये छोड़ दो, पुलिसमैन छोड़ दो, इतना अच्छा है, इतने बातें तो मानता है, बस एक ही तो बात नहीं मानी, वहां तो आपको झट से टिकट मिलती है ना। तो आप बताइए कि जब कोई किसी मुल्क में रहे और लोगों के बनाए हुए कानून को ना माने, तो उसको कहते हैं क्रिमिनल, और जब अल्लाह की शरीयत की कुछ चीजों को कोई माने, कुछ को ना माने, कहते हैं लिबरल। क्यों लिबरल मुस्लिम्स, वेरी सॉफ्ट, कोई बात नहीं, हमें ये अच्छा नहीं लगता हम नहीं मानते, ये अच्छा लगता है मान लेते हैं। और आप एक और बात भी इसका समझिए, ला तहवान फुसुकुम में, कि अमूमन हम दीन की बातें यानी इस किस्म की क्यों नहीं मानते? बहुत कम लोग ये कहेंगे कि 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़नी, वो ये कहते हैं पढ़नी, घर जाके पढ़ लेंगे, बाहर क्यों नहीं पढ़ते आप? ला तहवान फुसुकुम, लोग मुझे देखेंगे। ये देखिए कि बस दफा होता क्या है कि हम अपनी जाती प्रेस्टीज और इज्जत बचाने के लिए पूरी कौम और पूरी उम्मत को रुस्वन रुसवाई और खिजशन का शिकार कर देते हैं। हम सर पे दुपट्टा तो लेके क्यों नहीं निकलते बाहर? ला तवान फुसुकुम, मेरा मेरा स्टेटस खराब होगा। एक सिस्टर, उन्होंने कहा कि मैंने जब स्काफ किया लिया, स्काफ लेने से अलग कितना को फर्क पड़ता है इंसान पे, तो कहती मुझे मेरी दोस्तों ने कहा तुम अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही हो। अब यही बात किसी को गिराने के लिए बहुत काफी है बड़ी लगने लग गई, उतार तो कुछ और बताओ, क्या उतारूं कि मैं और छोटी लगूं? ला तहवान फुसुकुम, आज घर बैठ के ना आप 10 मिनट इस पे जरूर सोचें, अपने हाथ में कागज और कलम ले लें, क्योंकि जब हम अपने कलम के साथ कागज पे अपनी चीजें लिख देते हैं ना, तो दिमाग खाली होके सब सामने आ जाता है, फिर तकाबुल आसान है। ये कुरान रखा हुआ है, ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ये किताब रखी हुई है, क्यों? कि मैं देखूं भला मुझे दीन की कौन सी बातें मुश्किल लगती हैं। आप देखेंगे अंदर से ला तहवा का लफ्ज निकलेगा। नमाज पढ़नी है लेकिन वजू करना मुश्किल लगता है, रोजा रखना है लेकिन पेट में दर्द होती है। ये है नफ्स के पुजारी बनना, ये है अफराई तमने तखज इलाह हवा हो। तो इससे अल्लाह ताला ने रोका, और यहाँ आप देख लीजिए कि हम सब यहूद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आज उम्मत मुस्लिमों का यही हाल है ना, नहीं पसंद करते इन चीजों को, छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा ये बात तो समझ आ गई, बीमारी तो समझ आ गई, डायग्नोस हो गई, करें क्या, इलाज क्या है, ख्वाहिशों से बचने का क्या। इस पे एक तो मुझे याद आ रहा है, मैंने कभी ऑनलाइन पे देखा नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि अनएडिटेड लेक्चर्स में 17-18 पॉइंट्स पे एक मैंने लेक्चर दिया था, ख्वाहिशात पे काबू पाने के तरीके। यकीन करें मेरा ख्याल है अगर वो लेक्चर ऑनलाइन आ जाए तो हजारों लोगों से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये हम सबका इशू है। सेल्फ कंट्रोल कैसे सीखे, अल्लाह क़यामत के दिन की बातों में कहते हैं कि वो शख्स कि नहन नफ्स अनिल हवा फाइनल जन्नत हियल मावा, जिसने नफ्स को ख्वाहिश से रोक लिया उसका ठिकाना जन्नत है। और आज हम इस ख्वाहिश और इस हवा को खत्म कर लें, आप देखिए कि बिस्तरों से रातों को उठना भी आसान है। तो आपने फील किया होगा कि आपको अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में सबसे बड़ा दुश्मन आप इस वक्त कौन दिख रहा है, हवा, ख्वाहिशें। ये हवाएं भी इसीलिए होती हैं जो उड़ती रहती है ना, तो जो ख्वाहिशों में बंद होता है वो भी उड़ता है, उसको परवाह नहीं रहती माँ बहन बेटे की, बाप की, किसी की इज्जत की। वो कहता है क्या करो, छोड़ो जो भी ये करो, मुझे मजा है। फटी हुई पैंट घुटने से किसी एक ने पहनी, सब पहन रहे, क्योंकि जी सब पहन रहे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो करना क्या है, किताब से जुड़ना है, इल्म हासिल करें। यकीन करें अब हम हर दिन अगर दुआ मांगे ना कि अल्लाह हमें इल्म दे, आज के मुसलमानों को जरूरत इल्म सीखे, वॉयलेंस के बगैर, यानी बगैर जज्बाती हुए नारे लगाए अवेयरनेस हासिल करें, जज्बातियत में नहीं आना। मैं कहती हूँ कि आज के दौर का ये नारा है कि जागो और जगाओ, जागो और जगाओ, उठो सोने वालों। इस वक्त लोग सो रहे हैं, आज हम जब कुरान से कटे नुकसान क्या हुआ कि हम सबसे कट गए। और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि जब भी आज के जो दौर के फितने हैं अगर हम इस पे गौर करके देखें ना, तो आपको यही दो चीज़ें दिखेंगी। उस दौर में चूंकि नबी आते थे ना, तो नबी वो ऐसी बात कहते थे जो ज़ाहिर के अल्लाह का हुक्म होती थी, तो दो रवैये उनके दिखते थे, क्या कज़्ज़ब, तुम कुछ को तो झुटला दिया, वी डोंट केयर, बहुत सारों को, लंबी लिस्ट है इसकी, और तख्तलून, कुछ नबियों को तो कत्ल कर देते थे। इसकी मिसालें, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। आप पढ़ेंगे चौथे पारे में सूरत आल इमरान में पढ़ेंगे कि कितने प्यार से यहया मांगे ज़करिया ने, और इन्होंने बाप बेटे को कत्ल कर दिया। हज़रत ईसा के कत्ल की तो गवाही देते हैं सूरह मायदा में, आप पढ़ेंगे कि यहूद कहते हैं इन्ना कत्लना मसीह, हाँ हमने मारा कत्ल यहूद ईसा को। तो कत्ल तो इनके लिए ऐसे था, रिवायात में आता है कि इस तरह अपने नबियों को बेमार के आते और शाम को आके गाजर मूली बेचने लग जाते। एक एक दिन में 300-300 पैगंबरों को इन्होंने कत्ल किया। कल नबियों को कत्ल किया जाता था क्योंकि नबी आते थे, आज किसको कत्ल किया जाता है, हक वालों को। दीन की बात जो करे गायब कर दो, किडनैप्ड, जेलों में बंद कर दो, टॉर्चर सेल, अल्लाह सबको फितनों से बचा के रखे। गैरों के मुल्कों को तो छोड़ दीजिए, अपने मुल्कों में हक बात कहने वालों पे पाबंदियां, और उनकी बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले कोशिशें करते रहे, तड़पते रहे, लेकिन लोग उनकी बात नहीं करते कि बताओ ये कौन है। इसकी वजह यह है कि लोगों को बसा दिया। और आपको कहते हैं कि कुफर भी इस्लाम को सपोर्ट करता है, कौन से इस्लाम को, ख्वाहिशों वाला इस्लाम है। मुसलमान कहलाने वाला एक ऐसा फिरका है कि जिनका दीन पूरा अपनी ख्वाहिश का दीन है। आज मैं नाम नहीं लेती, हमारी आदत नहीं है लेने की, लेकिन मुल्कों में इस्लाम के नाम पे अगर किसी जगह मुसलमानों को रिलीजन माना है, उस फिरके को मुसलमान माना हुआ है जिसका नाम लेने की जरूरत नहीं। मेरे साथ एक हमारी स्टूडेंट थी, यूएसए की बात है, बहुत पहले की बात है, पूरा खानदान उनका इस्माइली से इस्लाम पे आया हुआ था, माशाल्लाह काफी साल से सिलसिला चल रहा था। तो उनकी नवासी जो थी वो मेरी क्लास में आती थी, तो मैंने ऐसे ही, मुझे शौक होता है कि सीखो दूसरों से भी क्या करते, तो मैंने ऐसे उसे एक दिन कहा कि आप बताओ कि क्या फर्क लगता है ना आपको। अब तो उसके वो लफ्ज़ मुझे आज तक नहीं भूले जो आज से शायद 8-10 साल पहले उसने बोले होंगे। उसने कहा कि बहुत ही बड़े दिल वाला कोई बंदा होगा ना तो वो दीन छोड़ के इधर आएगा, वरना उस दीन में इतनी रंगीनी है, शराब हलाल, बॉयफ्रेंडशिप गर्लफ्रेंड, ये मुसलमान कहते हैं खुद को हलाल, क्यों कहते हैं हर जुमेरात को आके जमात खाने में चंदा जो दे जाते हो, नमाजों की जरूरत नहीं, माफ हो चुकी, सिर्फ मुंह अपने बुजुर्ग की तरफ कर लो, रोजे माफ हो गए हैं, जकात की जगह मत जमात खाने को दो। और वो लोग, आप सबसे बड़ी जो दुख की बात है, सबसे आज की उम्मत मुस्लिमा का जो हमारे दिल में दर्द पड़ता है ना, वो इस बात से कि बातिल फिरकों वाले अपने दीन को कैसे स्पॉन्सर करते हैं। अल्लाह आपसे 2.5% मांगता है, 25% अपनी पे का वो अपने जमात खाने को देते हैं। बहुत सारे उनके साथी हमारे साथ होते थे, तो कहती थी कि सासा अगर ये लोग दीन पे सही आ जाए, ये सारी मस्जिदें खुद बन जाए, इतनी डोनेशन ये देते हैं। चर्चिस के अंदर 20-25% जाता है, और हम अगर हक बात करने आने तो 1-1 रुपए पे हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये आज के मसले हैं। आज लातहवा हवा के ऊपर 100% बात करते जाए, आज हमारे पास क्यों दीन के लिए नहीं बचता, दूसरी ख्वाहिशें बहुत है। तो अल्लाह से दुआ करें कि आज हम जुड़े, जागे और जगाए। बहुत सो लिया है, और बातें जितनी मर्जी कर लें। मुझे किसी की कोटेशन बड़ी अच्छी लगी आजकल में, मैंने देखी कि जो बातें कहते हो उस पे अमल भी करो, वरना अच्छी बातें तो लोग दीवारों पे भी लिखी हुई पढ़ लेते हैं। यानी ये उस्तादों के लिए कि लोगों को जो अच्छी कहानियां सुनाते हैं तो करके भी तो दिखाओ, ताकि लोगों को कोई रोल मॉडल मिले। आज असल में इल्म बहुत है, लेकिन रोल मॉडल्स हमारे पास नहीं है। लोग कहते हैं ये दीन वाले ये काम करते हैं, लेते देते हैं, ऐसे घर बार चीजें करते हैं, तो फिर हम क्या करें? क्वेश्चन मार्क बन जाता है उस वक्त लोगों के जहन में कि फलां पिछले 10 साल से हम उनके साथ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पिछले इस महीने उनकी बेटी की शादी हुई, वहां वो सब हुआ जो सबके होता है। अब आप बताएं कि हम क्या करें? ये हालात अहवान खुशकों, तो थोड़ा सीखे दीन, लेकिन वो सीखें जो आपको पिघला दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़क़लीलम मा युमिनून, अल्लाह ताला कभी बंदे को मायूस नहीं करते, थोड़े फिर भी ईमान लाते हैं। ये ना कभी हुआ ना हुआ, और ना क्यामत तक होगा कि सारा हक ही खत्म हो जाए। यहूद में से अच्छे बहुत लोग थे, इसके नीचे नाम लिख लीजिए, अब्दुल्ला बिन सलाम, उनके बहुत बड़े आलिम थे, इस्लाम में आ गए। अदी बिन हातिम क्रिश्चियनिटी से इस्लाम पे आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कैसे लोगों का हाल क्या है। अब जरा आप सुनिए, ये तो बन गई पूरी बात जो कि हमारी मेन थीम था पारे का, इस लेसन का। अब आगे वजूहात, यानी अब खौफ तो लग रहा है ना कि मेरा साथ तो ये नहीं हो रहा, क्या असरात मुरतब होते हैं ख्वाहिशों के पीछे चलने के। अब ये उनके जरा जुमले सुनते जाइए, ये सवाल जवाब है। जैसे आप कह लीजिए मुकालमा है, वह कालू, और वो कहते हैं, कौन कहते हैं? ख्वाहिशों के गुलाम, ख्वाहिशों के पीछे भागने वाले। कुलूबुना गुल्फ, अरे हमारे दिल तो पर्दों में है। ये नहीं कहते दिल पर्दों में, तर्जमा तो हम यही करते हैं, लेकिन असल में अरबी टेक्स्ट में देखें ये नहीं कहा गया कि कुलूबुना फी गुल्फ, दिल पर्दों में है नहीं कहा। कहते हैं हमारे दिल खुद गिलाफ हैं, वेरी सिक्योर हार्टेड, हमने अपने ख्यालात बांधे हुए हैं, हम नहीं इनकी बातों पे आते, 100 फोन करें हम नहीं आएंगे। यानी हम अपने तरीकों पे बहुत खुश हैं, ये बहुत बुलाते हैं हमें कुरान के लिए, लेकिन हम नहीं आना चाहते। गुल्फ, अल्लाह कहते हैं जिसको ये गिलाफ कहते हैं, बल्लानहुमुल्लाह, ये तो अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया इनके दिलों पे। अस्तग़फिरुल्लाह, इतनी जबरदस्त बात है कि महरूम है असल में, लेकिन खुद को पाने वाला समझते हैं, हिफाजत और महरूमी का फर्क नहीं जान सके। हैं स्टबन, ढीठ है, और कहते हैं हम बड़ा सब्र कर रहे हैं अपने दीन पे। अल्लाह मोहर लगाता है क्यों? बिकुफ्रिहिम, कुफर की वजह से। यहां नोट कीजिए अपने लिए, और दुआ कीजिए कि अल्लाह कभी ऐसा ना हो हमारे साथ कि जब बंदा हिदायत से अपने आप को इतना सिक्योर कर ले कि दिल पे वैक्स ही लगा ले ख्वाहिशात का, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं मानता। और इस पे आप पढ़ के देख लीजिए, तफसीर है अब्दुल माजिद दरिया बारी की, कहते हैं कि यहूद फखरी और एलानिया कहते थे कि ये नए पैगंबर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी कर डालें, हम इनके कहने में आने वाले नहीं, हमारे दिल तो इल्म के खजाने हैं, और हम मूसा अलैहि सलाम की तालीमात से बहुत ज्यादा आगाह हैं, हमें जरूरत किसी नई तालीम के कबूल करने की नहीं। जाके खुद पढ़ लीजिए तफसीर माजिदी में लिखा है, कहते हैं हमें जरूरत नहीं, हम बहुत जानते हैं। कभी आपने किसी के मुंह से ये बात सुनी? आप उन्हें कहें ना आप भी कुछ सुने, कहते मुझे सब पता। ये जुमला, ये कुलूबुना गुल्फ, बिल्कुल 100% अगर आप इसका हमारे यहाँ मुहावरतन तर्जमा करें ना कुलूबुना गुल्फ, तो इसका ठेठ तर्जमा ये, चलो मुझे सब पता, हमें नहीं जरूरत कुछ सीखने की। जुबानी बातें सिर्फ, ना हजरत मूसा से कोई ताल्लुक था, ना तौरात की असल तालीमात पे अब अमल था, और अगर सही अमल करते तो उनको खुद मुसलमान होना पड़ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करना पड़ता, लेकिन ऐसी बातें करके वो सिर्फ अपने आप को जान छुड़ाना चाहते थे। वरना आप देखिए कि जिस बंदे को एक दफा इल्म का चस्का लग जाए, मिसाल है कि वो तौरात पढ़ चुका, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस हुई तो इंजील से उसका ताल्लुक जुड़ गया, कुरान पढ़ने के बाद क्या वो छोड़ देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो भूखे कभी उनका पेट नहीं भरता, एक इल्म का भूखा और एक दुनिया का भूखा। दुनिया के भूखे को यहाँ कर लीजिए लात आह्वान पुसो को, ख्वाहिशों के पीछे भागने लगा। पेट भरा कभी लोगों का, एक घर अपना हो गया, दूसरा घर बनाने की ख्वाहिश रही, दूसरी भी होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदम का पेट कब्र की मट्टी से भरेगा। आप देखिए तो दुनिया बना रहे, बल्कि मैं देखती हूँ जिनके पास जितना ज्यादा है ना वो उतने भूखे हैं। गरीब के घर में कोई चार लोग आ जाए ना, वो कहते हैं जो है खिला दो, रात को चटनी खा लेंगे, सो जाएंगे भूखे। अमीर को गम पड़ा होता है, नहीं अब इसको खिला दिया तो दूसरे बच्चे अपने मासूम क्या खाएंगे, कि जो आदी हैं 4 दफा दिन में चिकन खाने के। जितना पैसा ज्यादा आता है ना उतनी हिरस होती है। मैं पैसे को अपनी जुबान में ना कोलेस्ट्रोल कहती हूँ। जितना कोलेस्ट्रोल भरता है ना दिल में, उतना दिल घुटता है, तंगी आती, चले तो सांस फूलता है, बात करें तो खोती नहीं है। तो पैसा बढ़ता है और अपनी जात पे खुला खर्च करो, बच्चों के लिए तो कमाते हैं और किस लिए करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इल्म का भूखा, उसका पेट कभी नहीं भरता। आप क्या सोचते हैं कि ये 1 साल 1.5 साल में फारिग हो जाएंगे? अल्लाह करे आप कभी फारिग ना हो, क्योंकि ये तलब कभी नहीं खत्म होती। और मैं को मुझे सब आगे, मैं कैसे कर सकती हूँ। बिल्कुल यही बात है कि जब उनको कहा जाता था कि दीन सीखो, तो उस दीन को सीखने के और नबी सल्लम पे ईमान लाने को वो क्या कह देते थे? नहीं जी, हम बहुत सख्त हैं, हमें जरूरत नहीं है। ये बातें गलत हैं। इनको आप देखिए कि भूखा है, उसके सामने खाना रखे तो नहीं खाएगा, नहीं कल खा लिया था ना, अब क्या खाना है। प्यासे बंदे के आगे पानी रखे तो क्या वो पानी छोड़ देगा? इसी तरह इल्म की भूख और प्यास वाला बंदा तासुब की वजह से कोई रोक ले तो रोक ले, वो फिर दीन नहीं है। मुझे पता हो कि इस जगह मैं आज आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, और अगर इस वक्त में मेरी जगह आप में से कोई जगह को प्लीज संभाल ले, और मैं कुछ दिन के लिए जरा जाके इधर ही किसी और जगह इसी वक्त में कुछ और सीखाऊं, तो मैं जाने को प्रेफर करूंगी वल्लाही। कितने घाटों का पानी बंदा पीता है तो फिर कुछ देने के काबिल होता है। इन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बंद किए। अल्लाह कह रहे हैं बल लाना हो मुल्ला, और लफ्ज़ लानत हमारे यहाँ उर्दू में बड़ा नापसंदीदा समझा जाता है, अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में लानना का मानी होता है बोध, दूरी, दूर कर दिया उनको अल्लाह ने खुद ही। ये अल्लाह का इंतकाम है। जब बंदा अल्लाह की तरफ नहीं आना चाहता ना, तो अल्लाह उसको निकाल देता है। अल्लाह ना करे आप में से कभी किसी की कोई मजबूरी बनी और आप इस कोर्स से निकले ना, तो इस बात को लिख लीजिएगा बल्ला ना हो। अल्लाह कहता है गेट आउट, निकल जाओ इधर से, तुम इस काबिल ही नहीं हो। वजह क्या? भी कुफरी है ना, शुक्री। जब कदर जो नहीं की आपने कुरान की, तो अल्लाह आपको यहां से उठा के कहीं ऐसी जगह रखे, कम से कम आप उसकी कदर तो करते हैं। चले म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक वालों की कदर ही करते हैं, तो अल्लाह आपको कहते हैं चलो कुरान छोड़ो म्यूजिक सुनो। और आप दिन में पढ़ें कुरान और रात को सुने आप गंदी चीजें और देखें गंदी चीजें, अगले दिन अल्लाह कहेगा गेट आउट, ला ना हो मुल्ला। यहाँ बैठ के भी दिल नहीं लगेगा। जरूरी नहीं होता कि अल्लाह यहाँ से निकाल देता है। कई लोग यहाँ होते हैं, उनका दिल दिमाग पता नहीं कहाँ पहुंचा होता है। जितनी दफा डिस्ट्रेक्शन हो ना आपको कुरान की क्लास में, अपना गुनाह याद करे। कोई कुछ गड़बड़ की है मैंने कल के दिन से आज तक के बीच में, जिसकी वजह से आज फोकस ही नहीं हो रही। अल्लाह ने अपनी किताब बड़ी सिक्योर रखी हुई है, इसको अल्लाह ताला जाया नहीं कराना चाहता। वरना तो आप देखिए आज तक कभी ये सिक्योर होती? आप इसको यूं समझिए जैसे मेरे से, मैं एकदम बात करते हुए सऊदी इस्लामाबाद में आ गया, बहुत सारी एम्बेसीज है ना वहाँ, और हर मुल्क अपनी एम्बेसी की बहुत हिफाजत करता है। लेकिन आपको कभी इतफाक हुआ अमेरिकन एम्बेसी में जाने का, तो वो सबसे हट के अब जो नई बनी है बिल्कुल, एक कितनी बसें शीशे बदल के पैदल चल के, गाड़ियां कहीं ले लेते हैं आपकी, सेलफोन्स आपके कहीं, चाबियां कहीं, बिल्कुल वो कब्र में जैसे केला बंदा जाता है ना फुरादा वाली कैफियत, तो वो आपको अपनी एम्बेसी में लेके जाते हैं। वजह क्या? सिक्योरिटी, कहते हैं सिक्योरिटी के लिए आइसोलेटेड है। बिल्कुल इसी तरह से आप समझिए कि जब दुनिया में सिक्योरिटी के लिए लोग अपने लिए ऐसा करते हैं, तो क्या अल्लाह इस किताब की सिक्योरिटी ऐसे कर लेगा? अल्लाह बड़े चुने हुए दिलों को इसके साथ जोड़ता है, जमा के रखता है। वलम्मा जाओहुम किताबन, जब कभी इनके पास आई किताब, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, कौन सी? मुसद्दिकुल लिमा माहुम, जो इस किताब की तस्दीक करती है। लिखिए जरा, गलती खाएंगे अगर आप जमाएं ठीक नहीं लिखे। किनके पास आई? यहूद मदीना, हम के नीचे लिखिए मदीना के यहूद। किताब उन, कौन सी किताब? कुरान। यही मुझे गड़बड़ थी कि आप तौरात कहेंगे। अब तौरात के हामिलीन को बताया जा रहा है कि अब तुम्हारे पास एक किताब आ गई, असल न्यू वर्जन, मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास है, लिमा माहुम, जो उसकी तस्दीक करती है, वेरीफाई करती है। किसको? माहुम के नीचे अब क्या लिखेंगे? अब आप बोले तो मैं खुश हूँ, शाबाश तौरात। बात वाजे, कल तक तौरात पढ़ पढ़ा चुके, उसके साथ नबियों के साथ जो मामला किया हो गया, अब तुम्हारे पास कुरान आ गया है जो उस तौरात से लेटेस्ट है। कल तक जो चीजें पढ़ते थे ओल्ड थी, ठीक थे, वो भी अपने वक्त का दीन ठीक था, लेकिन अब उससे ज्यादा अच्छी चीज आ गई है, तो अब तुम इसको ले लो। और अल्लाह ताला देखिए उनको कैसे यकीन दिला रहा है। और यहाँ देखिए कि यहाँ जो बात कह दी गई ना कि वो किताब है जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करती है, तो इससे उनको मोहब्बत दिलाई जा रही है ना कि भाई देखो तुम दीनदार हो ना, और वाकई यहूद दीनदार थे। मैं एक बड़ी नई चीज इनके बारे में मेरे जहन में आई, और मैंने जब उस पर गौर व फिक्र किया और थोड़ी सी रिसर्च की, तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि बार बार जो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन और नेमते, तो यहूद के अंदर 100 बुराइयां आई, माल परस्ती, दौलत परस्ती, सूद सब, लेकिन इनमें शिर्क नहीं आया। सिर्फ शिर्क का शायबा मिलता है इनकी हिस्ट्री में वो बछड़े वाले वाक्य में। या आगे जाके आप पढ़ेंगे सूरह तौबा में कि कालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, हजरत उज़ैर को अल्लाह ने मार के जिंदा कर दिया, तो इस पर ये कहते हैं अल्लाह के बेटे, बड़ा मामूली सा जिक्र है। इनके एक अंदर शिर्क, ईसाई डूबे शिर्क की वजह से, और यहूद का हाल यह है कि ये शिर्क नहीं करते लेकिन बाकी बड़े बुराई हैं। तो अब आप सोचिए कि जब ऐसे लोगों को अल्लाह ताला एक लेटेस्ट वर्जन दे दे तो क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे नया नहीं चाहिए, मुझे iPhone 4 5 नहीं चाहिए, मुझे वही पुराने जमाने का कोई छोटा सा फोन दे दो। करता है कोई? हमेशा दुनिया में क्या चाहते हैं? लेटेस्ट। तो दीन के नाम पे दीन वालों के दिल क्यों घुटते हैं? अल्लाह कह रहे देखो तुम दीनदार ही तो थे, मदीना में तुम दीनदार थे, अब तुम्हारे पास अल्लाह का नबी आ गया, कुरान लेके आ गया, और अच्छी चीज लेके आ गया, तो मान लो तुम्हारा फायदा होगा, उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत, उसकी फतह तुम्हारी फतह। और अब आप देखिए कि अल्लाह ताला इनको आर दिला रहे हैं कि ये नबी पता क्यों आया है, वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तहून अलल्लज़ीना कफरू, और इससे कबल वो कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। कानू, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये इंग्लिश वाले, देखे मुसलसल माजी में करते थे, कर रहे हो, उर्दू में कहते हैं तो माजी इस्तमरारी बन जाता है। कोई भी काम जब काना के साथ आता है ना, फेल आगे देखिएगा मुस्तकबिल का है, पीछे काना माजी है, तो मुसलसल करना। अब ये कौन सी चीज है? यहाँ थोड़ी सी दिलचस्प बात इनकी हिस्ट्री की, दूसरे पारे के आखिर में हम पढ़ेंगे डिटेल से कि जब बनी इसराइल पे जवाल आया ना, तो इनकी तौरात खत्म, दुश्मन आए, पीछे सुना चुकी हूँ कहानी, ये सब खत्म कर चुके थे। इनके पास कुछ बचे हुए तौरात के सहीफे रह गए थे, मन सलवा कुछ रह गया था। जब कभी ये दुश्मनों से पिटते, अब आप इमेजिन करें जरा मेरी तरफ देखें, आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराना चाहती हूँ कि यहूद के पास किताब आई, किताब इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से बदलनी शुरू कर दी। जब कोई कौम ऐसे करती है तो नुकसान क्या होता है कि अल्लाह दुश्मनों को गालिब करता है। इनके ऊपर दुश्मनों ने हमला किया, दुश्मन जवाब में सब कुछ ले गए इनका, कुछ बचे खुचे सफ़े इनके पास तौरात के बच गए, उसको इन्होंने बंद करके ना तबरुक के तौर पे बड़े खूबसूरत जुजदानों में रख लिया। और ये भी किसी कौम की तबाही की बात है कि वो तबरुकात की बड़ी कदर करे लेकिन असल किताब को पीछे डाल दे। अब होता क्या कि जब आइंदा फिर किसी दुश्मन से मुकाबला होता तो लड़ाई होती ना, अंदर से बड़े बुजदिल हैं, लड़ना चाहते नहीं, तो ये घर जाते तो तौरात का वो नुस्खा खोलते, फिर उसको खोलते। रिवायत में आता है सही तफसीर में कि वो सफ़ा तौरात का खोलते जिसमें अल्लाह के नबी की आमद की दुआ थी, आमद का जिक्र था, और फिर कहा करते थे कि अल्लाह हम तुझसे इस आयतों के वसीले से दुआ मांगते हैं कि उस नबी को जल्दी भेज जिसका जिक्र इधर मौजूद है, ताकि वो आए और हम इन उसके साथ मिल के दुश्मनों के साथ मुकाबला करें। ये है कानू मिन कब्लु यस्तफ्तहून, तुमने खुद दुआएं मांग के इल्म को बुलाया, अब नहीं कदर करोगे तो पकड़े जाओगे। दुआएं मांगने वाले ख्वाहिशें रखने वाले पलट जाते हैं क्योंकि उस रास्ते के तकाजे पूरे नहीं होते, कुर्बानियां नहीं दे सकते, उनके पास इतना वक्त ही नहीं कि वो अफोर्ड कर सकें दीन को। तो वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तहून अलल्लज़ीना कफरू, इससे कबल तो ये कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। फिर क्या हुआ? फलम्मा जाहुम, फिर जब वो आ गया उनके पास, कौन लिखी हुम? हुम कौन है? होम जमे, यहूद के पास मदीना में आया, उनके पास कौन आ गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मा अरफू, जिसको वो पहचान भी गए। मजे की बात है, इसमें पहचान लिया था कि ये नबी सच्चा है, ये बात ठीक कहता है, लेकिन तासुब की वजह से रुकावट बन गए। जैसे एक डॉक्टर जानता है ना कि दूसरा डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन दूसरे के बारे में राय रखता है, ये फलां बड़ा एक्टिव है, बड़ा क्लेवर है, ये बड़ा अच्छा सौदा लेता है, अगली दफा मैं भी वैसे ही लूंगा। जैसे कहते हैं ना, हीरे की कदर जौहरी जानता है, इस तरह याद रखें कि इल्म वालों को सबसे पहले पता चल जाता है कि दूसरा इल्म वाला उनसे ज्यादा इल्म वाला है, या उसके पास वो चीज है जो हमारे पास नहीं। मा अराफू, लेकिन कफरू भी ही, फिर भी इनकारी किया। वजह क्या? पीछे पड़ चुके इस तक पर, तो तकबर की वजह से मान के नहीं मानते। वजह क्या? वही बातें कि फिर हम छोटे हो जाएंगे, फिर लोग कहेंगे अच्छा जी ये तो बड़े दीनदार थे, कल तक मदीना में इनका बड़ा नाम था, अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, उनसे फ़ायदा ले रहे हैं, इसका मतलब ये शायद छोटे ही थे, फिर इनके पास जो लोग आते थे वो तो इनकी बड़ी बेइज्जती समझेंगे। हालांकि आपको पता कि ये सिर्फ मा तहवा अनफुसुकुम है, नफ्स की ख्वाहिश है। हमेशा इज्जत बढ़ती है बंदे की, किसी से भी इल्म सीखना चाहता है। अब हुआ क्या, उन्होंने क्या किया? नाशुक्री की ना, अल्लाह के नबी आए थे ना मदीना में, कितनों ने फायदा उठाया बेमिसाल, लेकिन जिन्होंने नहीं माना, नुकसान किसका हुआ? आज किन का नाम है, कभी आपने अंसार के तस्करों में उनका नाम सुना? मुहाजरीन में मुशरिकीन मक्का के सरदारों का नाम सुना? कभी आज तक आपने किसी को अपने बच्चे का नाम अबू जहल रखते देखा? अबू लहब, और इसके बरक्स अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, ईसा, मूसा, ये नाम लेते ही प्यार आता है। बिलाल हबशी थे, कभी आपने किसी बच्चे का नाम रखते हुए ये सोचा नहीं नहीं बिलाल है, कल काले थे, हम नहीं रखते? बिलाल लफ्ज में इतना प्यार है, हैं, बिल्ला बिल्ले बिल्ले बिल्ला बिल्ला आता है, हैं, बिलाल लफ्ज से बड़ा प्यारा बच्चा जहन में आता है, हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कदरदानी की। तो यहाँ हाईलाइट कर लीजिए कि नशुक्र लोगों से अल्लाह नेमत ले लेता है। आप देखिए ये नसीब की बातें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि यहाँ पे आने का मकसद क्या है, और ना यहाँ आना ना जाना रहना किसी पे आसान नहीं है, लेकिन अभी तक नॉर्वे वाले हमारे जो साथी हैं ना, वो इस दर्द को महसूस करते हैं। हम सब एक दूसरे से प्यार किस लिए करते हैं? इसलिए कि अल्लाह की नेमतों के लिए करते हैं। अगर आप एक लम्हे के लिए यहाँ सोचें, टैक्स में रहते हुए कि नबी सल्लम को यहूद मान लेते, मैं बड़े शौर से एक जुमला बोलने लगी हूँ और इस कौम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए। अगर मदीना के यहूद अल्लाह के नबी की दावत पे लबैक कहते, इधर बैठ के कसम भी दिखाने को दिल चाहता, लेकिन आज पूरी दुनिया में इस्लाम होता, वो चंद लोग मुसलमान हो जाते तो उनकी नस्लें, उनके शागिर्द, उनके बाकी लोग भी इस्लाम को प्रमोट करते, और अल्लाह ने जितनी इस कौम को स्किल्स दी है पूरी दुनिया में इस्लाम था। और आज आपको पता है वो हैंडफुल लोग इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं हर जगह। इतना अहम होता है एक एक बंदा, कभी किसी को ओवरलुक ना करें, ढूंढा करें कौन सा बंदा है आपके इर्द गिर्द जो दीन पे अकेला आ जाए, उसके साथ चार और आ जाएंगे। कोई बासर लोग, असर रसूख रखने वाले, दुनियादार, दीन में भी उनको खूबियाँ, प्यार से मोहब्बत से उनको बुला लें कि शायद उनके आने के साथ चार लोग और भी दीन से जुड़ जाएं, क्योंकि हम लिए दिए नहीं रह सकते। हमें इसकी कोई परवाह नहीं कितने लोग आ रहे हैं, हमें इसकी बहुत परवाह है कि कितने नहीं आ रहे और उनको ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बे समझ तो रहो भी ही, आयत 90 को देखिए, कितना बुरा सौदा किया उन्होंने, अनफुसहुम, अपने नफ्सों के साथ, यानी बड़ी बुरी कीमत है जो उन्होंने अपने नफ्सों के साथ की, सौदा कर लिया क्या, आई यकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु, कि उस चीज का इनकार कर दिया जो अल्लाह ने नाजिल की। लिखे हजरा इसको, हाथ कांपते हैं कि नहीं? किसी को कुरान की आप दावत दें और वो कहे नो थैंक्स, आई एम कंफर्टेबल विद माय रिलीजन, माय लाइफस्टाइल, क्या ये अल्लाह के उतारे हुए का कुफर नहीं है? जब कोई किसी जगह भी दीन की बात को सीखने सिखाने उसकी मदद का इनकार करता है, तो असल में वो अल्लाह के साथ अपना मामला बिगाड़ता है। अल्लाह दो दफा अल्लाह तआला कह रहे हैं कि यगफुरु बिमान सल्लल्लाहु, क्यों करते हैं लोग? इसकी वजह बगियन, ये लफ्ज बगी को हाईलाइट कर ले इस आयत में से, आयत समझ आ जाएगी। वजह क्या है? दिल की जलन, गुस्सा, हसद, अबादी, इस बात पे इनको गुस्सा आता है कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पे चाहता है अपने फजल से किताब नाजिल कर देता है। बात समझिएगा, यानी इनको इस बात पे गुस्सा है कि अल्लाह ने बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में नबी क्यों भेज दिया, इस पे जलते कुड़ते हैं। तो इनको फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह जिस पे चाहे अपना दीन पेश कर दे और जिसको चाहे हटा दे। आप देखिए मुसलसल एक ही मजमून चल रहा है। अगर आप अभी शुरू में, मुझे पता है कि 7 आयतों के बंदा चलता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप 7 जब बाद में बार बार पढ़ेंगे और जब आप असाइनमेंट करेंगे फिर और बहुत सारी चीजें खुलेंगी आपके दिमागों में इंशाल्लाह। लेकिन एक ही बात की तकरार है कि इनके पास हक आया और ये हक के मुकाबले में ढीठ हो गए, कभी ख्वाहिशों की वजह से, कभी तकब्बुर की वजह से, कभी अपनी जात के अंदर गुम गुल्फ है, हम बहुत आता है, हम बहुत इल्म वाले हैं, क्या हमारे पास इल्म वाले नहीं, हमें सब कुछ आता है। अल्लाह ताला कहते हैं अपनी इस नफ्स की इतनी थोड़ी कीमत ली इन्होंने। यानी यकीन करें सिर्फ अरबी पे मैं रहूँ ना तो मेरा दिल अंदर से ना ऐसे पिघलता है कि हाय तुमने अपने नफ्सों की क्या कीमत की, किस चीज़ पे अपनी जानों का सौदा किया कि अल्लाह के उतारे हुए को छोड़ के तुम फिर दुनिया की चीज़ों में पड़ गए। अल्लाह का फैसला है, गुस्से में ना हो, ना तुम्हारे नाम रहने हैं, ना तुम्हारे ग्रोह रहने हैं, ना फिरके रहने हैं, सबने चले जाना है। और जब कोई कौम इस तरह करे, हक बात का इनकार करे, तो उसकी सजा आयत के अगले हिस्से में फबाउ बि गदबिन अला गदब, बस उन पर अल्लाह के गजब पे गजब टूटे, जिसको हमारे यहाँ उर्दू में भी कहते हैं ना, उस पे तो गजब ही टूट पड़ा। किसी कौम पर अल्लाह का गजब कब टूटता है इस आयत की रोशनी में? जब अल्लाह की तरफ से आए हुए हक की नाफरमानी करें। अच्छा, जब गजब की बात आती है तो हम कहते हैं हाँ वो टीटस के हमले, बुख्त नसर के हमले, जो हिस्ट्री पीछे सुनाई थी उसी में मजीद इजाफे आप कर लें, बेबलियंस के हमले, आशूरियों के हमले, और हमारे करीब के दौर में हिटलर ने जो मामला किया, चैम्बर्स में, आग के चैम्बर्स में इनको जलाया गया, ये सारी बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। लेकिन आप इस आयत पे रहते हुए सोचिए कि यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह अपने दौर के मुसलमानों पे गजब कब, गजबनाक कब होता है, जब वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता हक का इनकार कर दे। आज के मुसलमान क्यों मखजूब हैं? क्योंकि अय यकफुरु बिमा अनज़लल्लाह, अल्लाह ने जो नाजिल किया उसका इनकार। कौन सा इनकार है? अमली इनकार है। पढ़ते पढ़ाते तो कुरान हम भी बहुत है माशाल्लाह, छापते छपवाते बांटते, लेकिन अमल नहीं करते। बच्चे से एक बात हो रही थी, माशाल्लाह कुरान का हाफिज है, तो मुझे बता रहा था मैंने ये पढ़ा कर रहा, पूछती हूँ हमेशा जब भी बात होती है तो सुनती भी हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने उससे पूछा कि आज क्या पढ़ के आए हो ना, तो उसने मेरा हले सूरह तौबा या कोई सी आयत बताई, तो मैंने कहा ये तो के जब पढ़ रहे थे तो समझ आ रहा था, तो अब वो फिर उस पर तो आपको पता है, नहीं मेरे भाई का बेटा उसकी बात कर रही हूँ, तो मैंने उसे कहा कि बेटा अब ऐसा करना कि अब ये तो पढ़ ही रहे हो ना, अब अम्मी, और उसकी अम्मी माशाल्लाह बहुत इल्म वाली है और अल्लाह ने उनको दिया हुआ है इल्म भी, तो मैंने कहा अम्मी के साथ बैठ के ना अब सूरह फातिहा से तर्जमे के साथ एक एक रुकू सीखना शुरू करो, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा क्या पढ़ते हो। तो इनकार किस चीज़ के आज? इल्म का इनकार है। कुरान का इनकार तो कोई मुसलमान नहीं करता। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, न शुक्रे लोग, काफिर लोग, इनके लिए तो रुस्वा कुन अज़ाब है। इन आयतों में लिखा हुआ है राज के मुसलमान क्यों पीछे हैं। ग़ालिबन अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए हो तारिके कुरान होकर। कि जब मुसलमान कुरान पर अमल करते हैं, कुरान को पसंद करते हैं, मुसलमान बनते हैं तो इज्जत मिलती है, और आज हम कुरान को तर्क करके ख्वार हो गए। कितना बुरा बेसमा, एक एक लफ्ज को देखिए, कराहत के साथ, तकलीफ, भूख प्यास, आज हर मुसीबत ऐसे नहीं लगता मुसलमानों पे टूटती है, हर मुश्किल ये अल्लाह की तरफ से है कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इस नफ्स को बेच के जन्नत ले सकते थे, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, लेकिन तुमने जन्नत नहीं ली, इतने सस्ते बिक गए। ऐसे ही जैसे माँ बच्चे को डांटती है कि इन पैसों से नकली जेवर खरीद लाई हो इतने पैसों के, इससे तो तुम सोने का ले लेती, कल काम आता। डांट है इस जिस्म बुत को, क्या जिस्म पे सहला सहला के बिस्तर ही तोड़ने हैं ना। खा खा के मोटे होके वॉशरूम गंदे करने हैं ना, पहन पहन के लॉन्ड्रीज गंदी करनी है ना। क्या तुमने अपने इस जिस्म से लिया और इसको अल्लाह के रास्ते में खपाते तो तुम्हारे साथ क्या होता। कदर करो अपने जिस्म की, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें बड़े प्यार से पैदा किया। फिर गजब और गजब, नफ्स परस्ती, ख्वाहिश परस्ती इंसान को अल्लाह के गजब का शिकार करती है। तो आप देखिए सारी बातों पे अगर जितनी हो इस पे जमा कर लें तो यहूद के साथ जो लफ्ज़ निकल रहे हैं, खुद परस्त, नफ्स परस्त, तासुब परस्त, परस्तिश है ना, वर्शिप। हमारे एक लफ्ज़ पड़ा हमें थी आपका परस्तार, आजकल उसको फैन कहते हैं, आपका फैन, एसी नहीं, पता नहीं फैन क्यों कहते हैं। ये परस्तार लफ्ज़ क्या है, लिख के देख लें, परस्तिश करने वाला, आई एम योर वर्शिपर, तो क्या ये शिर्क तो नहीं हुआ ना। फिल्मी सफ़े खोल के देख लीजिए, वीकली मैगजीन देख लीजिए, आपके पास परस्तार है। सारा हर तरफ कहीं ना कहीं किसी की पूजा ही हो रही है। और फिर बात जुड़ जाएगी लातहवान को सुकुम पे, हवा वो चाहते हैं जिस पे नफ्स खुश हो। उनको अपने ही हसद ने जला के रखा हुआ था अल्लाह के नबी की इज्जत पे और जो मामलात है। तो हम सब भी इस पे गौर व फिक्र करें, सोचें। अब ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला अगली आयत में आपको मुझे तरीका सिखाते हैं क्या करें। वैसा की ललहुमा आमीनो, और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ, यानी कीप टेलिंग, कीप कॉलिंग देम, बुलाते रहो प्यार से, किस पे, किसकी तरफ आओ, बीमान जलोल्ला, जो अल्लाह ने नाजिल किया। नोट करें, किसी फिरके का नाम है इधर, जमात का, इदारे का, उस्ताद का, कुछ नहीं। अनजलल्लाह, मैं आप सबको आज ही नसीहत करूं, जब कभी किसी को क्लास की दावत है ना तो मेरा नाम ले ना नूरुल कुरान का ले, अल्लाह की किताब का ले। ये भी ना कहे कि हम नूरुल कुरान के स्टूडेंट हैं, ये कहा करें हम कुरान के स्टूडेंट्स हैं। बीमान सल्लल्लाह, अल्लाह के नाम ले, हर तरफ लोगों को अल्लाह से जोड़े, और अपना टेस्ट भी लेते रहे थोड़े थोड़े दिन बाद, हर वीकेंड पे चेक किया करें, अल्लाह से करीब हो रही हूँ कि लोगों से। अगर अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है ना तो जरिया जो बने वो भी अच्छा लगता है, लेकिन असल याद रखिए कि ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, अल्लाह की जात से जुड़ेंगे एंड तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और जो लोगों के लिए आते हैं वो फिर लोगों ही की वजह से चले भी जाते हैं। कालू, अब जवाब सुनिए उनका। अब ये जवाब के अंदर आपको आज के बहुत सारे मसलों का हल दिखेगा। पीछे आयत को दोबारा देख लेना कि क्या उनको कहा क्या हो जो अल्लाह ने नाजिल किया कुरान। कालू, कहने लगे, नूमिनु बिमा उन्जिला अलैना, हम सिर्फ उस पर ईमान लाएंगे जो हम पे नाजिल हुआ। नीचे जमात का नाम लिख लें, ग्रुप का नाम लिख लें, हम सिर्फ उनका सुनेंगे जो हमारे उस्ताद हैं, हमारी जमात, हमारी किताबें, हमारी तफसीरें। व यकफुरुना बिमा वराअहू, और हम इनकार करते हैं उसका जो इसके सिवाय। ये कौन सा जुमला है? तासुब। आज है ऐसा इस्लाम मुसलमानों के पास? वल्लाही तासुब है कि हम सिर्फ अपने गिरोह की बात सुनेंगे, अपने फिरके, अपनी जमात की। अल्लाह सुब्हान तआला हैरत करते हैं। ये जो आप मेरा एक छोटा सा जुमला आयत के साथ लिख लिया करें ना, तो आपको, क्योंकि जो लंबी आयतें होती है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में समझे तो समझ आती है। अभी तक जो आयत हुई, आपने उनको दावत दी कि अल्लाह के नाजिल की तरफ आओ, उन्होंने जवाब दिया नहीं, हम सिर्फ वो मानेंगे जो हमारे मिजाज के। और इसमें एक और भी एंगल है, दीनदार लोग जो होते हैं ना वो अपने दीन के नाम पे, फिरके के नाम पे रुक जाते हैं। दुनियादार लोग क्यों नहीं आते कुरान की तरफ, कहते हैं नहीं, जो बाप दादा के तौर पे तरीके चल रहे थे उन पे ही खुश हैं, हम नया तरीका नहीं बताते। अगर ये ऐसी ऐसी बातें यहाँ बताते हैं, ये ना करो वो ना करो, हम नहीं आते क्योंकि हमारे बाप दादा तो ये करते थे। तो अब वो कहते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला अब कमेंट दे रहे हैं, अच्छा वहुवल हक्कु मुसद्दिकन लिमा माहुम, अच्छा अगरचे वो कुरान हक ही हो, सच्चा करने वाला, तुम्हारी किताबों को फिर भी नहीं मानोगे। बात समझ आ रही है आपको? टैक्स की कितनों को समझ आ रही है? बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह कि चाहे हक के फिर भी नहीं मानोगे, अच्छा फिर भी नहीं मानोगे, अच्छा तुम्हारी मर्जी, अच्छा ठीक है, तुम ये कहते हो इसलिए नहीं मानना कि ये बनी इसराइल से क्यों नहीं आया। तो अल्लाह ताला इनसे अब दलील मांगते हैं, कुल फलीमा तक तुलून अम्बिया अल्लाह, तुम्हें ये गिला ना कि ये नबी हमारी नस्ल से क्यों नहीं आया, तो ये तो बताओ फिर तुमने उन नबियों को क्यों कत्ल किया, मिन कबलू इन कुंतुम मोमिनीन, जो इससे पहले आ गए थे, अगर तुम ईमान वाले हो। बात वाज़े, इसको इसलिए नहीं मान रहे कि ये बनी इसराइल इस्माइल से हैं, तो ये बताओ कि ईसा कहाँ से आए थे, फिर क्यों कहते इन्ना कतलना ईसा इब्ने मरियम, बात बात है, यहाँ मुझे और आपको दलील सिखाई गई है। यकीन करें, सिर्फ इस एक आयत को स्लोगन बना के ना आप दूसरों को दीन की दावत दें, इतने ही नपे तुले लफ्जों में जितने में अल्लाह ताला दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह लोगों का शऊर तो बेदार होगा। वाकई नहीं अपमाएंगी, वाकई नहीं सुनेंगी, चाहे वो हक हो। अच्छा फिर ये बताओ कि क्या आप अपनों की सारी सुनते हो? बाद लोग तासुब लेते हैं ना कि नहीं नहीं हम उनकी सुनते हैं, तो उनकी भी नहीं सुनते, कोई किसी की नहीं सुन रहा होता। ऐसे कभी होता है? बड़ी मजे की बात है, एक दफा ऐसा हुआ कि कहीं थे तो क्लास की कोई मैं बात हुई होगी, तो कोई सिस्टर थी तो उनको साथियों ने दावत दी, कहेंगे नहीं नहीं हमारी भी क्लास होती है। तो ये बात मैं सुन रही थी आपस में, तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर तो आप उधर जाती हैं ना। तो मुझे बड़ा शौक पैदा हुआ, मैं पास थोड़ी हुई उनके सिस्टर जो बात कर, मैंने कहा अच्छा सिस्टर कोई क्लास होती है इधर, मुझे बताइए जरा कहाँ होती है ना। तो कहती अच्छा, तो मैंने कहा कब कब होती है, तो हफ्ते में एक दिन का उन्होंने नाम लिया। तो मैंने कहा अच्छा हफ्ते में एक ही दिन होती है, तो कहती जी जी एक ही दिन होती है, फिर मसरूफ होते हैं ना लोग आते नहीं है ज्यादा दिन। तो मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह किस दिन होती है, मैं हिसाब लगा रही थी कि मेरे पास वो टाइम फारिग हो तो मैं चलूँ ना। तो मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि कहाँ पे वो लास्ट वीक उन्होंने क्या पढ़ा, फिर पोल खोलता नहीं असल में कई वीक से मैं वहां भी नहीं गई। ये है बात, ये आपको सुनाना चाह रही थी कि जो आपकी दावत पे कहीं नहीं आ रहे होते ना, वो बाकी जगह भी नहीं जा रहे होते, सिर्फ शोर होता है और पता कुछ नहीं होता। तो मुझे साफ पता चल गया कि ये वहां भी नहीं आती। तो मैंने कहा वहां अगर कोई जाती भी है तो वो तो एक दिन की बात है। बस तो बस सिर्फ स्लो झूठा तसल्ली होती है हमारी, सिर्फ ढकोसले का दीन रखा हुआ है। महीने में एक दफा जाते हैं ना कहीं, बस काफी, खाना रोज 3 दफा खाते हैं और कुरान हफ्ते में, महीने में, साल में एक ही दफा, सिर्फ वो रखा हुआ है अल्लाह का एक छोटा सा हिस्सा अपनी जिंदगी के अंदर से निकाल के। अल्लाह तआला कहता है कि बस इनको छोड़ दो, इनके हाल पे ये नहीं मानेंगे। वैसे मैं सोचती हूँ कभी कभी कि हम पढ़ते हैं तो हमारा दिल दुखता है ना। अब इस वक्त आपके दिल में तड़प तकलीफ महसूस हो रही है यहूदे मदीना के लिए, मुझे तो बहुत रहम आ रहा है, तो अल्लाह को कितना आता होगा इन पे, वो तो रहमान है रहीम है, और अल्लाह के नबी को कितना आता होगा। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि हरीसुन अलैकुम, वो तो तुम पे बड़ी हिर्स करते हैं। तो फिर आप सोचिए कि सच्चा दीनदार जो होता है ना, ये तड़पने वाला होता है, तड़पना और तड़पाना है, खुद भी तड़पे, अपने बच्चों के लिए तड़पे, भाइयों के लिए तड़पे। पहले अब कोई मौजू ना डिस्कशन में आए आपके फोनों पे सिवाय इसके कि भाई ये बताओ कुरान पढ़ते हो, तफसीर पढ़े हो, बहन तुम अपना गम बाद में सुनाना, पहले ये बताओ तुम्हें तफसीर आती है। 10 लोगों के मसले आते हैं ना, आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बातें मशवरे, कोई किसी की घर टूट रहे तो किसी की सास से लड़ाई है, किसी की आखिरी नसीहत उनको यही देती हूँ कि सिस्टर आप इन सारी चीजों को छोड़े, घर नहीं तोड़ने, तौबा करें, घर तोड़ने के लिए नहीं बनते। मैंने किसी से कहा कि देखे जब बच्चा पैदा हो जाता है ना तो ये फितरत का खामोश इशारा है कि ये घर नहीं तोड़ना, क्योंकि अब इस बच्चे का मुस्तकबिल है। आप बिजी करें अपने आप को, छोड़ें क्लास में आए, कुरान पढ़ें, तफसीर सुने, किसी की सुने, आप बिजी हो जाए, वो जो कह रहे हैं उनको कहने लें, आखिरी हल आपको इसमें मिलता है। कुछ दिन लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं नहीं अब सास काफी ठीक हो गई हैं, वो सास नहीं ठीक हुई, आप ठीक हो गई हैं, पहले आप हर वक्त उनके जुमले सोचती रहती थी। सच्ची बात है, आज अगर आप ये मैसेज आम कर देना कि दुनिया के गमों से निजात का इलाज क्या है, कि इस किताब पे आ जाओ, तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह लोगों को ज्यादा समझ आती है, क्योंकि दुनिया दिखती है, आखिरत नजर नहीं आती। अब बात पूरी हो गई।